हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 27 एंड 28। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। शब्दों का अर्थ देखिए। प्रकृति, प्रकृति अर्थात जो प्रकृति है ना, यानी कि प्रकृति में अब क्या क्या आ जाता है, इसका विशुद्ध वर्णन तो भगवान श्री कृष्ण 13 चैप्टर में करते हैं, जिसमें 13.6 में भगवान बताते हैं कि प्रकृति के अंदर क्या क्या है। भगवान कहते हैं, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचर। महाभूतानि अहंकारो, महाभूतानि ना पांच महाभूत होते हैं, कौन से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है। उसके बाद है अहंकार। अहं, अहं का मतलब होता है मैं, कार मतलब मैं करने वाला हूँ, यानी कि ये हमारे जो अंदर अहंकार है ना, जो ये हमें कहलाता है या ये सोचने पर विवश करता है कि मैंने ये कार्य किया, वो प्रकृति की देन है, ठीक है। उसके बाद बुद्धि, बुद्धि वो हो गए सात, ठीक है, पांच महाभूत, छठा अहंकार, सातवां बुद्धि और आठवां है अव्यक्त। यहाँ पर लिखा है बुद्धि अव्यक्तमेव च। अव्यक्त किसको बोलते जानते हो? अव्यक्त का मतलब होता है गुण। प्रकृति के अंदर गुण होते हैं, कौन कौन से गुण, तीन प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो प्रकृति को कार्य करने पर विवश कर देते हैं कि मैं ये आपको कार्य करना है, जो गुण आपके ऊपर हावी हो जाएगा उस गुण के अनुसार आप विवश होकर कार्य करोगे, ये प्रकृति के अंदर, क्योंकि आप हो वैसे आत्मा गुणों से निर्लेप है, निर्गुण है, परंतु क्योंकि प्रकृति के अंदर फंस गई है इसलिए उसको प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। और आगे है इंद्रियाणि दशैकं च, दश इंद्रियां, इंद्रिय कौन कौन सी है, पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन सी है, आंख कान नाक त्वचा रसना, और कर्म इंद्रियां कौन सी है, हाथ पैर जिह्वा लिंग और गुदा। ये दस इंद्रियां हैं और एकम का मतलब होता है एक मन, 10 इंद्रियां और एक मन, कितने हुए? 11 हुए। पहले कितने हो गए थे? 8, 5 महाभूत, 6 अहंकार, 7 बुद्धि, 8 गुण। ये 8 हो गए और ये 11 हो गए, टोटल कितने हुए? 19। ठीक है, उसके बाद पंच सैंद्रिय गोचर और 5 इंद्रिय गोचर यानी इंद्रियों के विषय क्या है? जो हमारे ज्ञान इंद्रियां उनके विषय कौन कौन से? रूप, रस, स्वाद, गंध और स्पर्श। तो 5 ही हो गए, यानी टोटल कितने हुए? पहले 19 हुए और अभी 5 डाले तो 24। ये 24 तत्व से ये प्रकृति बनी है। ठीक है, प्रकृति के 24 तत्व हैं, उसके विषय में आज भगवान बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानी, यानी जो प्रकृति है, क्रियमाणानी का मतलब होता है किए जाकर, और गुणाए कर्माणि सर्वश, गुणाए मतलब गुणों के द्वारा। अब क्योंकि प्रकृति के अंदर ये सारे इंद्रियां हैं और ये शरीर है और उस प्रकृति के अंदर गुण भी हैं, तो गुणे कर्माणि सर्वश, तो सभी प्रकार के जो कर्म हैं वो गुणों के द्वारा प्रेरित होने के कारण हम करते हैं। लेकिन अहंकार विमूढात्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार यानी अहंकार से मोहित होकर कि मैं कर रहा हूँ, कर क्या सकता है एक मनुष्य? कुछ भी नहीं कर सकता, एक तत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता। लेकिन वो अपने आप को हमेशा अहंकार विमूढ़ आत्मा का मतलब होता है मोहित हो गई है ये आत्मा प्रकृति के अंदर आने के बाद गुणों के अनुसार कार्य करती है और मोहित हो जाती है और क्या सोचती है? कर्ता हम इति मन्यते, कर्ता मतलब करने वाला, अहम मतलब मैं हूँ, इति इस प्रकार मन्यते यानी सोचता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी इसका अनुवाद देखिए, जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी कार्य हो रहे हैं उसका मेन कारण किसको बताया जा रहा है? प्रकृति के गुण। वास्तव में ये गुण, ये कार्य क्यों होता है? क्योंकि स्वभाव हमसे कार्य कराता है, जो हमारा नेचर है वो हमें वो कार्य करने पर विवश कर देता है। कई जन्मों से एक ही कार्य करते 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 हमारा स्वभाव हो गया है रजोगुण के अंतर्गत रहकर या तमोगुण के अंतर्गत रहकर कार्य करने का। और ये जो गुण है ना, तीन गुण, तो तीनों गुणों से मिश्रण से हमारा स्वभाव बनता है। स्वभाव कैसे बनता है कि तीन गुण, जो गुण हम पर हावी हो जाता है उस हिसाब से हमारा स्वभाव बन जाता है और हम वही कार्य करने पर विवश हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पर कि गुणे कर्माणि सर्वश, वास्तव में गुण आपको विवश कर देते हैं कार्य करने के लिए। अब जिसका रजोगुण स्वभाव है वो रजोगुणी कार्य करने के लिए बाध्य है, उसको वो कार्य करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण है, उसको आप कितना ही रोकोगे तो भी वो ब्राह्मण का कार्य करना नहीं छोड़ेगा। और उसी तरह ऐसे एक दृष्टांत देते हैं कि एक चोर था और साधुओं की संगत से वो भी साधु बन गया, लेकिन अब साधुओं के साथ वो एक बार है ना किधर गए थे यात्रा के लिए और रात हुई। अब क्योंकि चोर था तो रात को नींद आती नहीं जल्दी, तो चोरी करने का स्वभाव था उसका। अब लेकिन साधुओं के साथ रह रहा था तो चोरी कर नहीं सकता, क्योंकि चोरी करना तो उसे साधु लोग मना करते ना। तो रात को नींद नहीं आ रही थी, अब सोचा क्या करूं, तो अपने स्वभाव से इतना प्रेरित हुआ कि उसने क्या किया, एक की रोटी दूसरे के अंदर डाल दी, दूसरे के ना सामान में डाल दी, उसका लोटा उठा के उधर रख दिया, उसकी वो चीज कमंड उठा के उधर रख दिया, जो जो चीजें साधुओं की थी वो इधर उधर रख गए। सुबह उठे, किसी सारे साधु उठे और किसी का कुछ मिल ही नहीं रहा था। बोला मेरी रोटी नहीं है, वो बोला मेरा लोटा नहीं है, वो बोला मेरा ये नहीं। तो बोला ये चोर है ना, चोरी इसने की होगी, चोर को है ना साधुओं के साथ बैठना ही नहीं चाहिए। तो चोर ने कहा कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, अभी मैं सही हो गया हूँ, मैंने आप लोगों की है ना अलग अलग कर दिए, आप लोग इधर ही हैं, मैंने नहीं उठाया कुछ भी। तो उसे बोला, उन्होंने बोला आपने आखिर ऐसा किया क्यों? तो बोला मैं चोर हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा स्वभाव है। अब मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है कि कार्य किए बगैर रहा नहीं जाता मुझसे, और इधर का माल उधर करना मेरा स्वभाव है। तो ऐसे कहते ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। तो उसका स्वभाव था कि अभी मुझे ऐसा कार्य करना है। उसी तरह एक ना सोनार था, सोनार होता ना जालिया, उसको साधुओं की संगत मिली और साधु बन गया, और है ना वो भिक्षाटन करके सन्यासी बन गया, और भिक्षाटन करके वो है ना खाता था जो भी उसको मिलता था ना मधुपेरी करके। तो जब भी उसको कोई रोटी देता था तो ऐसे से उसको हाथ में पकड़ के तोलता था, यानी कि उसको ऐसा लगता था कि रोटी जरूर 10 ग्राम या 12 ग्राम की होगी, और ऐसा स्वभाव बन गया था कि उसमें भी देख रहा है कि इसके अंदर फेंट, वो फेंट होता है ना डालते हैं मिलावट कितना किया हुआ है आटे का, और ये इस तरह। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि भगवान ने क्या कहा है, प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणी सर्वश। क्योंकि आप जब तक इस प्रकृति के अंदर बद्ध हो, तो प्रकृति के अंदर क्योंकि गुण है, तो गुणों के कारण आप कार्य करने के लिए विवश हो। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे, वास्तव में व्यक्ति जो कार्य करता है तो वो गुणों के द्वारा प्रभावित होकर कर रहा है, पर वो समझता नहीं है कि ये गुणों के द्वारा कर रहा। अहंकार इति मन्यते कर्ता हम, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार के कारण वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन यदि वो ऐसा सोच भी रहा है कि मैं कर रहा हूँ, तो क्योंकि आपको तो पता है कि गुण उसके द्वारा करवा रहे हैं, तो आप उसको बुद्धि भेद ना करो। जैसे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगीनम, कि अज्ञानी है, उस श्लोक को समझ में नहीं आ रहा है, विमूढ़ आत्मा है। तो वो लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो भी ओके, आप उसको बोलो नहीं कि आप ऐसे कर रहे हो या गुण कर रहे हैं, आपको ये बता रहे, क्योंकि उनको समझ में आएगा नहीं। वास्तव में जीव कुछ नहीं कर सकता, यानी कि अब जीव के पास जो कुछ भी है, हम जो खाते हैं, जो सूर्य प्रकाश हमें मिलता है, जो वायु जल सब कुछ भगवान का है। सुबह उठते हैं तो क्या हम अपने अपने बल पर उठ सकते हैं? नहीं, जब तक भगवान का बल नहीं हो तब नहीं उठ सकते। जब तक सूर्य प्रकाश जो कि कृष्ण के द्वारा दिया नहीं जाए, तो फिर प्रभात नहीं होती है। और ये सब किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, हमने अपना नहीं बनाया, सब कुछ भगवान का है। तो हम भगवान की दी हुई चीजों को धन्यवाद नहीं करते अगर उसको भोगते हैं और कहते हैं ये मेरा है, मैं ये सब मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। अब कोई बोले कि क्या ये शरीर हमारा है, क्या ये सदैव हमारे साथ रहेगा? जब ये शरीर भी हमारा नहीं है, हमारे साथ नहीं चलेगा, ये मकान दुकान फिर कैसे हो सकते हैं हमारे? कुछ भी हमारा नहीं है, ना कुछ हम अपना लेकर आए थे, और ना ही जब इस संसार से हम जाएंगे तो कुछ हमारे साथ रहेगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं चलेगा। जो कुछ भी लिया इस संसार से लिया, और जो कुछ भी है वो प्रकृति की देन, हम उसे ही वापस करके जाएंगे। इवन जो इतने मेहनत से हम कमा कमा कर ये जो ज्वेलरी पहनते हैं, वो भी हमारे अंतिम समय में ना निकाल दी जाएगी। और कपड़े भी हमें ना ऐसे पहनाए जाते हैं, कफन जिसका नाम होता है, जिसके अंदर एक भी जेब नहीं रहती, और घर वाले सोचते हैं कि यदि इसको जेब वाला ना ड्रेस पहनाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ डाल के शरीर है, कुछ भी नहीं मिलेगा। और कुछ लेकर भी नहीं आए थे, कुछ भी हमारा नहीं है, लेकिन ये विमूढ़ आत्मा है जो ये सोचता है, अहंकार मतलब बेवकूफी है जो हम ये सोचते हैं कि हमारा है हमारा है हमारा है। तो जो ये सोचता है कि संसार में कुछ हमारा है या मैं करता हूँ, तो वही सबसे बड़ी मूर्खता है मनुष्य की, अहंकार विमूढ़ आत्मा। ये मूर्खता है क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हमारा है या हम करता है, तो फिर हम बंधन में फंसते हैं। लेकिन जब कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, कृष्ण भावनामृत क्या है कि सब कुछ कृष्ण का है, मैं भी कृष्ण का हूँ, और मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए कर रहा। कार्य में अंतर नहीं है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो कार्य से नहीं, ऐसा नहीं कि कृष्ण भावना भावित होकर आप खाना पीना छोड़ दोगे या आप है ना सोना छोड़ दोगे या आप आहार निद्रा कुछ भी नहीं छोड़ोगे, आप सारे कार्य वही करोगे, लेकिन सिर्फ कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी। पहले आप क्या सोच के करते थे कि मैं इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहा हूँ, और बाद में जब ये अहंकार का पर्दा ये विमूढ़ आत्मा का पर्दा हट जाता है तो फिर क्या सोच के करता है जीव, यही सोच के करता है क्योंकि मैं आत्मा हूँ, आत्मा भगवान का अंश है, अंश का कार्य है तो पुण्य की सेवा करना और मेरा कार्य केवल भगवान को प्रसन्न करना है। मैं जो भी कार्य करूं, अगर मैं खा रहा हूं मुझे खाना है तो मैं खुद से नहीं खा सकता क्योंकि पहले भगवान ने 13 में बताया कि भुंजते दे त्वगम पापा ये पचन के आत्मा कारण। अगर आप अपनी इंद्र तृप्ति के लिए प्रसाद बनाते हो या खाते हो तो आप अपराध कर रहे हो। तो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो अपराध होता है, लेकिन क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है इसीलिए वो फंसता है, बंधन में बंध जाता है। लेकिन यदि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो वही कार्य करता है और बंधन से छूट जाता है। वास्तव में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि कार्य कैसे करना है। अभी कर्म योग सीख रहे हैं ना हम, तो कार्य कैसे करना है कि आप बंधन में ना फंसो। तो भगवान कहते हैं जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, और कर्ता मान बैठता है तो क्या होता है, तो बंधन में फंस जाता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। उसको क्या सोचना चाहिए कि ये तो बस प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, तो हो मेरा उसमें कोई इंटेंशन नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, मेरा अगर कोई है। वास्तव में ज्ञान क्या है कि जीव को ये पता चल जाए कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं है सिवाय कृष्ण के, तो मैं जो भी कार्य करूं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करूं, तो फिर चाहे कोई भी गुण आपको तंग कर रहा है, कोई भी संसार में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ भी हो रहा है, उसकी बदी में आपको बंधन में फंसना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी मनुष्य ये सोचता है कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई और भी मेरा है या ये शरीर ही मेरा है या और किसी को प्रसन्न करने के लिए मुझे कार्य करना है या कोई भी इच्छा और आसक्ति हृदय में आ जाती है तो बंधन का कारण बनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत होते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है, वो ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है जो ईश्वर की अध्यक्षता में कार्य करता है। भौतिकतावादी व्यक्ति ये नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्र तृप्ति के लिए इंद्रियों को निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। श्रील प्रभुपाद ने यही बताया है कि क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रियों को सदैव तृप्त करने के लिए सोचता रहता है, मोहग्रस्त हो जाता है, अहंकार के कारण यही सोचता है कि मैं ही कार्य कर रहा हूँ इसलिए अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। वास्तव में हमारा शाश्वत संबंध कृष्ण के साथ है, हम कृष्ण का अंश हैं और कृष्ण को प्रसन्न करना जीव का लक्ष्य है। और जब भी हम पूर्ण को प्रसन्न करते हैं तभी हमारा अंश जो होता है वो स्वतः प्रसन्न हो जाता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो न प्रकृति को समझ रहा है, न प्रकृति के गुणों को समझ रहा है, खाली क्या सोच रहा है कि करता हम इति मन्यते, कि मैं ही करता हूँ। लेकिन वो ऐसा समझ रहा है तो ऐसा समझकर वो जो भी कार्य कर रहा है उसके लिए बंधन कारक बनता है। तो फिर हम आगे भगवान बताएंगे कि क्या करना है। भगवान कहते हैं 28 में, कृपया मेरे साथ श्लोक का उच्चारण कीजिए। तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वान सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वान सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। शब्दों का अर्थ देखिए। तत्ववित्तु अर्थात परम सत्य को जानने वाला। अब पहले के क्या लफ्ज लिखा गया था, विमूढ़ आत्मा, यानी जो मोहग्रस्त ऐसी आत्मा है जो भूल गई है, जिसको समझ में नहीं आ रहा, परम सत्य के विषय में पता नहीं है। लेकिन ये क्या है, तत्ववित्तु जो जानने वाला है, जिसको परम सत्य के विषय में जानता है। तो माना लेकिन अब पहले तो ये बोला कि क्योंकि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होती है, वो क्या करती है, अपने आप को ही कर्मों का कर्ता मान बैठती है, जबकि वास्तव में कौन कर रहा है, तीनों गुण कर रहे हैं। लेकिन तू, लेकिन जो ज्ञानी है, यानी जो तत्ववित्ता है, जो परम सत्य को जानते हैं, महाबाहो हे विशाल बुद्धिमान वाले, अभी अर्जुन को बोल रहे कि देखो अर्जुन, तुम तो महाबाहो हो ना, तुम तो बेवकूफ नहीं हो, विमूढ़ आत्मा नहीं हो, तो तुम तो तत्ववेत्ता हो, तो क्या करना है, गुण कर्म विभाग है। गुण कर्म मतलब भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म। अब गुण के अंदर रहकर कार्य विभाग है, कि जो भी कार्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है, गुणों के अनुसार हो रहा है। तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, क्योंकि इंद्रियों में गुण है तो गुणों के अनुसार वो इंद्रियां जो है वो अपने विषयों की ओर आसक्त रहती हैं, यानी इंद्रियां जो है वो अपने विषयों को खोजती रहती हैं। इंद्रिय कैसे, जैसे आंखें हैं तो दर्शन को, कर्ण हैं तो शब्द को, जिह्वा है तो स्वाद को, और त्वचा है तो स्पर्श को सदैव खोजती रहती है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यानी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में तत्पर रहती हैं। इति मत्वा न सज्जते, इस प्रकार मत्वा मतलब मान कर न मना कभी नहीं सज्जते आसक्त होता है। वो ये सोचता है कि मैं क्या हूँ, वास्तव में मैं आत्मा हूँ, मैं परम सत्य का अंश हूँ, मुझे इस भौतिक प्रकृति या भौतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रकृति यानी ये शरीर जो है वो प्रकृति की देन है और प्रकृति में गुण है, तो शरीर जो है वो अपने विषयों की ओर आसक्त हो रहा। लेकिन ये मानकर वो खुद यानी उसकी आत्मा जो जान गया है, तत्ववित्त हो गया है, वो जान गया है, तो वो इन सारी चीजों में आसक्त नहीं होता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करता है, ये सोचकर क्योंकि भगवान ने मुझे यह शरीर दिया है, भगवान ने मुझे जन्म दिया है, तो जो भी मुझे अपने कर्तव्य पालन करने हैं वो पालन करता है, लेकिन किसी के और है ना आसक्त नहीं होता, ना तो किसी पर प्रभुत्व जमाता है, ना किसी चीज पर हक जमाता है और ना ही अपने इंद्र तृप्ति की ओर आकर्षित होता है, ना ही कोई आसक्ति होती है और ना ही कोई अहंकार होता है। वो कार्य करता है केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कृष्ण ने मुझे ये ड्यूटीज दी हैं, इसलिए मुझे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। बस हृदय के अंदर से ये आसक्ति खत्म हो जाए ना, कर्म बांधने वाला नहीं होता है, कर्म में जो आसक्ति है ना हमारी वो बांधने वाली होती है। अनुवाद देखिए, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सत्काम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है कि दो तरह के कार्य होते हैं। कौन सा? पहला होता है भक्ति भाव में कर्म, यानी केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म, और दूसरा है सत्काम कर्म। अब भक्ति भाव में कर्म कैसे होते हैं? जो कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। और सत्काम कर्म कैसे होते हैं? जो फल की आशा से किए जाते हैं। अब इन दोनों के भेद को भली जानते। भेद क्या है इन दोनों में? कि अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि सत्काम कर्म करेंगे तो बारंबार जन्म मृत्यु की जंजीर प्राप्त होगी। तो अब एक तत्ववित्त हो गया, उसको पता चल गया कि कौन से कार्य करने से कौन सा हमें है ना रिजल्ट मिलेगा, तो फिर वो क्या करता है? यहाँ पर भगवान कहते हैं कि बली बांधी जानते हुए वो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। फिर वो सोच लेता है कि इंद्रिय तृप्ति तो मेरे लिए अजाब बन जाएगी। उसको फिर इंद्रिय तृप्ति में कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वो जान लेता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, और तृप्ति इंद्रियों की तृप्ति से प्राप्त नहीं होगी, आत्मा की तृप्ति से प्राप्त होगी। और आत्मा कैसे तृप्त होगी? सवे पुंसाम परो भक्ति यतो भक्ति सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। और भक्ति कैसी हो? अहितुकीय प्रतिहिताहा ययात्मा सुप्रसीदति। यदि अहितुकी भक्ति है, जिसकी बदली में कोई गर्ज नहीं है और अप्रतिहिता यानी कि कभी खंडन नहीं हो उसका, ऐसी भक्ति करेंगे भगवान की, जो अहितुकी भक्ति जिसकी बदली में मुझे इंद्र तृप्ति का कोई साधन नहीं चाहिए, और कंटिन्यूस भक्ति सतत भक्ति जो की जाती है, यानी कंटिन्यूस भगवान के नाम का स्मरण और भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, तो ययात्मा सुप्रसीदति, इसी से हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाए। क्योंकि उसको ये पता चल गया ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो उसी हिसाब से कार्य करेगा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से तात्पर्य में समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। उसे पता चल गया ना कि भौतिक जगत और मेरी तो कोई मैचिंग ही नहीं है। ये भौतिक जगत कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। और मैं कैसा हूँ? भगवान आत्मा कैसी है? सच्चित आनंदमय। वो कभी भी विनाश, जो नित्य है शाश्वत हो यम पुराण, वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। तो ये असुखम और अशाश्वत जगत उसके साथ मैच नहीं करता है, तो उसे पता चल जाता है ये भौतिक जगत उसके रहने की जगह नहीं है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सचित आनंद है और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस गया हूँ। पता चल जाता है कि बस अभी मैं फंस गया हूँ इस देहात्म बुद्धि में, लेकिन वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है। तत्ववित्तु कहा गया, यानी जो परम सत्य को जान लेता है, अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फिर वो सारे कार्य क्यों करेगा, पहले क्या करता था? अब देखो ये जो दो श्लोक है ना, 27 और 28, उसमें भगवान ने 27 में विमूढ आत्मा जो है उसकी वो किस तरह से कार्य कर रहा है और जो तत्ववित्तु है वो किस तरह से कार्य करता है, इन दोनों का भेद बताया। क्योंकि भगवान तो चाहते हैं ना कि अर्जुन कार्य करे, तो अर्जुन किस स्तर पे कार्य करेगा उसके हिसाब से भगवान उसको बता रहे कि जो तत्ववित्तु है वो क्या सोचते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे कार्य करना है, लेकिन उन कार्यों में कोई भी आसक्ति नहीं रहती है। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य केवल भगवान की सेवा में नियोजित करने चाहिए, फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत में कार्य में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। खाली भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, भौतिक इंद्रियों के जो कार्य होते हैं, उनकी तृप्ति के लिए जो कार्य होते हैं, वो स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये तुम्हारे लिए इतना हानिकारक है। आपको पता चल जाए कि यदि मैं ये चीज खाऊंगा तो भले आपकी कितनी पसंद की चीज हो, लगी आपको खबर पड़ जाए कि उसके अंदर जहर है, आप खाओगे? भले आपको कितना ही अच्छा लगता है लेकिन आपको पता चल जाए कि वो जहरीली है, मैं खाऊंगा तो मरूंगा, तो आप खाओगे? नहीं खाओगे ना। इस तरह देखो, एक भक्त है, उसको पता होता है कि अगर कभी भूख भी लगी होती है कि मुझे भूख लगी, लेकिन उस दिन एकादशी हो, तो अनाज चाहे कितना ही सुंदर उसके सामने बनाकर, कितनी टेस्टी डिशेस उसके सामने बनाकर रखी है, लेकिन उसे पता है कि एकादशी के दिन अनाज में अपराध होता है, पाप का वास होता है, मैं खाऊंगा तो नरक में जाऊंगा, तो फिर वो खाएगा? भले उसको कितनी भी भूख लगी हो, भूखा पड़ा मरेगा, मतलब अगर एकादशी का कोई उसके पास आयोजन नहीं है तो भूखा रहना स्वीकार करेगा लेकिन खाएगा नहीं। क्यों? उसे ज्ञान हो गया ना। तो वास्तव में ज्ञान का क्या मतलब होता है कि आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे आपको पता चल जाए, अगर आप रोगी हो, आपको पता चल जाए कि ये डॉक्टर जो है वो बिल्कुल सही कर देगा, आप फौरन क्या करोगे, उसके पास जाओगे। अगर आपको पता चलेगा ये औषधि मैं खाऊंगा तो मैं जल्दी सही हो जाऊंगा, तो ज्ञान जैसे हो गया आपने फौरन कर। लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि अभी मेरी तबीयत सही नहीं है लेकिन अगर ये मैं पीऊंगा तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, जैसे खांसी हो जाए तो आप अगर कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो और भी, तो ज्ञान हो गया तो क्या करोगे? छोटा बच्चा बोलेगा पापा मुझे खांसी है ना, अभी मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। यानी कि ज्ञान होने का मतलब है कि आप फौरन कार्य बंद कर दोगे जो कार्य आपके लिए हानिकारक होगा। तो उसी तरह से तत्ववित्ति को क्या पता चल जाता है कि अगर मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करूंगा तो मैं फंसूंगा, तो फिर वो खाली कार्य क्यों करता है? केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कि सब कुछ कृष्ण का है, मैं भी कृष्ण का हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण के आदेशों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो किसी भी चीज में आसक्त नहीं होता है, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता है। भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है क्योंकि ये परिस्थिति जनक तथा अस्थायी है। अब वो भौतिक इंद्रिय क्यों? परिस्थिति, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार, और अस्थायी है, कुछ शाश्वत नहीं है संसार में। कोई आनंद आपको मिल भी जाए तो वो स्थायी तो नहीं है ना, थोड़े समय के लिए आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का कोई भी साधन जो है वो स्थायी नहीं होता है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। वो जानता है कि संसार का सारा, जब मेरी ये भौतिक दशा जो है, मेरा शरीर और मेरा सब कुछ, मन बुद्धि, ये सब भगवान के नियंत्रण में है, भगवान के आदेशानुसार इसको कार्य करना है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता है क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। कितना सुंदर बताया यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने कि अगर भौतिक कोई है ना ऐसे कंडीशन सर्कमटेंसेस भी आ जाते हैं तो वो उससे विचलित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सबको भगवत कृपा मानता है। एक बारी क्या हुआ, कि एक पति पत्नी नहीं नहीं शादी हुई थी, बड़ा प्रेम करते थे आपस में, बहुत प्रेम करते थे, और कृष्ण कृपा से उन दोनों की शादी हो गई और वो हनीमून पे गए एक है ना आइलैंड होते ना जो वो वाटर के अंदर कुछ ऐसा जजीरा थोड़ा वाटर पार करके ऐसे, तो वहां पर गए और वापिस आ रहे थे बोट में बैठे थे तो अचानक बहुत तेज तूफान आ गया, इतना तेज तूफान आ गया कि लगा कि अब उनकी जो कश्ती है वो डूब जाएगी। तो जो लड़का था ना जो उसका पति था वो बहुत भगवान का बहुत ज्यादा भक्त था और पत्नी अभी नई नई भक्ति में, उसको सही भक्ति के विषय में पता नहीं था लेकिन है ना वो बहुत भक्त था और उसको उसकी पत्नी उसको बार बार बोली है आपको डर नहीं लग रहा है कितना भयंकर तूफान है, हमारी नई नई शादी हुई है, इस तूफान में हम मर सकते हैं, ये बोट जो है वो उल्टी हो सकती है, आपको जरा भी डर नहीं लग रहा है? तो है ना वो मुस्कुरा रहा था, महामंत्र का जप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बोला अभी इस समय तुम्हारा तुम कुछ करो ना, ये अभी हम मर जाएंगे और तुम यहाँ पर महामंत्र का रटन कर रहे हो, देखो तो सही कुछ तो कोई तो ऐसा तरीका हो जिससे हम बच जाएं, हम हमारा ही शरीर बच जाए। तो फिर भी महामंत्र का जप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पत्नी तो विचलित हो रही थी तो उसने कहा तुम बेवकूफ हो, अक्कल खत्म हो गई तुम्हारी, कुछ तो करो। तो उसने ना बोला, उसके पास एक तलवार थी उस बोट में रखी हुई थी, तो उसने क्या किया वो तलवार निकाली और उस अपनी पत्नी के गर्दन के ऊपर रख दी, गर्दन के एकदम करीब में, और पत्नी है ना उसको देख रही है गौर से और पति और भी उसको आहिस्ता आहिस्ता तलवार को और भी आगे कर रहा है। तो फिर है ना पत्नी ने कहा ये क्या मजाक है? बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो बोला किस बात से डर तुमसे? तो बोला कि हाँ मैंने तुम्हारे ऊपर तलवार रखी है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो बोला तुम जान देते हो मुझ पर, मरते हो मेरे लिए, तुम कभी मेरा नुकसान कर ही नहीं सकते, तुम कभी मेरे साथ कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते जिससे मुझे दुख हो। तो बोला यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि वो कृष्ण मेरा वो मुझे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझसे इतना प्यार करता है वो कोई भी कार्य मेरे लिए ऐसा नहीं करेगा जिससे मेरा नुकसान हो, मुझे किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाने देगा, वो कभी भी मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं, वो कष्ट भी यदि आएगा तो वो केवल और केवल उसकी कृपा, क्योंकि पूरी प्रकृति पूरा संसार पूरी दुनिया जो है वो उसके इशारों पर काम करती है, तो वो यदि ये तूफान भी है तो उसके इशारों के ऊपर है, तो कृष्ण जो भी कार्य करता है तो वो अपने भगवान कहते हैं ये भजन के तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम, जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं मैं उनका हूँ, उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, और यहाँ तक कहते हैं श्रद्धाना मत्करमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः, जिनको बहुत ज्यादा श्रद्धा है मेरे अंदर, जो ये मानते हैं कि केवल कृष्ण ही मेरा आना शुभ चिंतक है और सब कुछ मेरे ही अर्पण यानी मत पर मेरे ही शरण में होते हैं, ऐसे भक्तों से मैं बहुत बहुत प्रेम करता हूँ, तो मैं तो पूरा कृष्ण को सरेंडर हूँ, कृष्ण के ऊपर मेरी निश्चल श्रद्धा है, तो मैं कैसे मान लूँ कि कृष्ण कोई भी कार्य करेगा वो मेरे लिए हानिकारक होगा। तो जो भक्त होते हैं वो कभी विचलित नहीं होते, कोई भी सरकमटेंसेस होते हैं वो उनको कृष्ण कृपा मानते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्ववित्त कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम महापुराण 1.1.11 के विषय में बताया है, 1.2.11 इति शब्दते, के जो वाक्य में तत्व वेता है वो जानते हैं कि भगवान के तीन फेस होते हैं, भगवान ब्रह्म है जो कण कण में व्याप्त है, और भगवान परमात्मा है जो मेरे हृदय में विराजमान है, और भगवान का एक साक्षात रूप है, एक साकार रूप है जो भगवान की एक अपनी एक नगरी है गौलोक वृंदावन धाम, जहाँ पर भगवान रहते हैं अपने भक्तों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान को जो सही तरह से जानता है और भगवान के साथ अपने संबंध को सही तरह से समझता है, उसको तत्ववित्त कहते हैं। और वो क्या करता है, जो तत्ववित्त होता है वो कभी भी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है तो वो कार्य क्यों करता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। और मूर्ख क्या करता है, मूर्ख ये सोचता है अहंकार विमूढ आत्मा करता हम मन इति मन्यते, वो सोचता है सब कुछ मेरा है और मैं केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ये सोचकर कार्य चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, लेकिन जो ये सोचकर कार्य करता है कि इंद्र तृप्ति मेरा लक्ष्य है तो वो फंसता है, और जो ये सोचकर कार्य करता है कि कृष्ण को प्रसन्न करना मेरा लक्ष्य है, मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता हूँ, तो वो भगवान को प्राप्त करता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण।